नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर गहराई से बात करने वाले हैं, संजीवनी विद्या का विस्तार।
जी,
ये 1988 से 90 के दौर में रची गई क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला की 16वीं कड़ी है।
हाँ।
और इसके लेखक हैं पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।
जी,
पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था, याद है ना?
बिल्कुल, उन्होंने वसंत पंचमी 1990 को वंदनीय माताजी से यही कहा था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा और इसे, मतलब इस क्रांति धर्मी साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है।
हाँ, तो चलिए आज उनके इसी ज्ञान शरीर के एक अहम हिस्से को, इस पुस्तक को समझने का प्रयास करते हैं।
जी जरूर, ये पुस्तक असल में संजीवनी विद्या, जिसे वो मेधा भी कहते थे, उसके महत्व पर जोर देती है।
मेधा?
हाँ, मेधा मतलब वो गहरी समझ जो सिर्फ किताबी पढ़ाई से या कहें स्कूली शिक्षा से कहीं आगे है।
अच्छा,
इसका सीधा असर व्यक्ति के अंतःकरण पर होता है और उद्देश्य है व्यक्ति और समाज दोनों का नवसृजन करना।
तो पुस्तक की शुरुआत में ही शायद उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें भी कुछ कहा गया है।
हाँ बिल्कुल, पूज्य गुरुवेव ने बताया कि उस दौर की स्कूली शिक्षा का दायरा ज्यादातर नौकरी पाने, मतलब आजीविका कमाने तक ही सिमटा हुआ था। उसमें वो बात नहीं थी जो व्यक्तित्व को निखारे, समाज सुधार के लिए जरूरी मार्गदर्शन दे। यहीं पर वो विद्या या मेधा की जरूरत महसूस होती है।
अच्छा, तो ये विद्या या मेधा ये सिर्फ जानकारी या इन्फॉर्मेशन से कुछ ज्यादा है?
हाँ बहुत ज्यादा, ये कोरी जानकारी नहीं है, ये विवेक जगाती है, पर्सनैलिटी को रिफाइन करती है, अंदर की प्रतिभा को उभारती है और व्यवहार में शालीनता लाती है। लक्ष्य तो इतना ऊंचा रखा गया कि एक सामान्य व्यक्ति भी देव मानव बन सके।
देव मानव?
हाँ, यानी देवत्व के गुणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य। वो पुराने सूत्र वाक्य है ना, विद्या ददाति विनयम।
हाँ, विद्या विनम्रता देती है।
और विद्या या मृतम अश्नुते, विद्या से अमरत्व मिलता है। तो सार यही है कि जो समाज में गलत है, अवांछनीय है, उससे निपटो और जो सही है, मतलब औचित्य, उसे बढ़ावा दो, उसे सक्रिय करो।
ये विचार तो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इतने ऊंचे विचार को आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या कोई प्रैक्टिकल प्लान भी दिया गया था? उस समय तो दिक्कतें भी रही होंगी, जैसे निरक्षरता, महंगाई, लोगों की अरुचि भी।
हाँ, यही तो पूज्य गुरुदेव की विशेषता थी, वो सिर्फ सिद्धांत नहीं देते थे बल्कि एक ठोस जमीनी कार्य योजना भी प्रस्तुत करते थे।
अच्छा,
पहला कदम था युग साहित्य का सृजन, ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जगा सके, और फिर इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई गई, विद्या विस्तार योजना।
विद्या विस्तार?
हाँ।
इसमें क्या था?
इसमें जो कार्यकर्ता थे, जिन्हें पूज्य गुरुदेव युग शिल्पी कहते थे, मतलब नए युग के निर्माता,
युग शिल्पी,
उनसे आवाहन किया गया कि रोज कम से कम 20 पैसे का अंशदान दे और 2 घंटे का समय समाज के लिए निकालें।
रोज 20 पैसे और 2 घंटे, वे तो बहुत ही ग्रास रूट लेवल का जुड़ाव लगता है।
बिल्कुल, और फिर इसी से जुड़ी थी झोला पुस्तकालय की योजना।
झोला पुस्तकालय,
ये क्या था?
बड़ा ही सरल और प्रभावी तरीका, कार्यकर्ता अपने झोले में ये पुस्तकें लेकर घर घर जाते थे।
अच्छा,
लोगों को पढ़ने के लिए देते थे।
हाँ।
और जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें पढ़कर सुनाते थे।
वाह, ये तो कमाल है।
और साथ ही अखंड ज्योति पत्रिका, पूज्य गुरुदेव उसे अपनी संरचनात्मक संपत्ति मानते थे।
हाँ हाँ, सुना है।
उसके तब के करीब 5 लाख अंकों से 25 लाख पाठकों तक ये विचार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। सोचिए, छोटे छोटे दान और समय दान से ज्ञान को एक जन आंदोलन बनाने की सोचती है।
ये तो वाकई अद्भुत है, मतलब लक्ष्य क्या था, कितने लोगों को इस तरह से जोड़ना चाहते थे?
लक्ष्य बहुत बड़ा था, कम से कम 1 लाख ऐसे समर्पित कार्यकर्ता या कहें अध्यापक तैयार करना जो फिर करोड़ों लोगों तक इस युग चेतना को ले जा सके।
1 लाख अध्यापक? हाँ, सिद्धांत बहुत साफ था, जले दीपक ही बुझों को जलाएंगे।
मतलब जो खुद प्रबुद्ध है वही दूसरों को जगा सकते हैं।
बिल्कुल।
और इस बड़े अभियान में, इस विद्या विस्तार में कौन लोग शामिल हो सकते थे? क्या ये किसी खास वर्ग या समूह के लिए था?
नहीं नहीं, यही तो इसकी सुंदरता थी, ये सबके लिए था। पूज्य गुरुदेव ने समाज के हर वर्ग से अपील की।
जैसे?
जैसे रिटायर्ड लोग, पेंशनर, घर गृहस्थी में व्यस्त लोग, नारी शक्ति, खासतौर पर वो स्त्रियां जिन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ी फुर्सत मिल गई हो।
अच्छा,
और यहाँ तक कि जो संपन्न वर्ग के लोग थे उनसे भी कहा कि भाई कंजूसी और स्वार्थ छोड़ो और इस महान काम में हाथ बटाओ।
मतलब पूरी तरह से समावेशी।
बिल्कुल, सभी जातियों पंथों मान्यताओं के लिए दरवाजे खुले थे। उद्देश्य बहुत विशाल था। उस समय दुनिया की आबादी करीब 600 करोड़ थी, उन सभी तक युग चेतना का प्रकाश पहुंचाना।
इतना बड़ा काम, इतने सारे कार्यकर्ता, तो उन्हें तैयार करने के लिए ट्रेनिंग के लिए भी कुछ व्यवस्था रही होगी?
जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए शांति कुंज में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। 5 दिवसीय सत्र होते थे और भी कई तरह के शिविर लगते थे।
और ये ट्रेनिंग सिर्फ लेक्चर या जानकारी देने तक सीमित थी या कुछ और भी था?
नहीं, ये सिर्फ बौद्धिक ट्रेनिंग नहीं थी, इसमें साधना का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे तपश्चर्या।
तपश्चर्या
मतलब आत्म अनुशासन, इंद्रिय संयम, एकाग्रता का अभ्यास, और साथ में प्रायश्चित की प्रक्रिया भी थी।
प्रायश्चित?
हाँ, अपनी पिछली गलतियों को पहचानना, उनका परिमार्जन करना ताकि अंतःकरण शुद्ध हो सके। उद्देश्य था व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर काम करके वास्तविक बदलाव लाना।
सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तो गहरा विज्ञान है।
जी, और इसमें शांति कुंज का जो सात्विक माहौल था, वहाँ का विशेष आहार और ऋषि युग में यानी पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की जो प्राण चेतना थी उसे भी बहुत सहायक माना गया।
तो अगर हम सार निकालें तो संजीवनी विद्या का विस्तार सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये तो व्यक्ति और समाज को बदलने का एक पूरा घोषणा पत्र, एक एक्शन प्लान जैसा है।
बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें ज्ञान भी है, सेवा भी है और साधना भी है, तीनों का संगम है।
और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना?
हाँ बिल्कुल, कि आज के इस भागदौड़ वाले युग में इस संजीवनी विद्या की, इस विवेकपूर्ण जीवन दृष्टि की क्या रेलेवेंस है। इसके कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हम आज भी अपना सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें, अपने अंदर भी और अपने आसपास भी।
ये सचमुच एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। प्रकाशक ने भी शायद पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि ये पूज्य गुरुदेव के जीवन और उनके विशाल साहित्य का सार है।
जी,
और ज्ञान सबके लिए सुलभ हो इसलिए इस पर कोई कॉपीराइट भी नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है।
हाँ, और ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि इसमें जो कुछ आंकड़े हैं वो 1988-90 के समय के हैं।
सही कहा, लेकिन जो मूल भावना है, जो सिद्धांत है, वो तो शाश्वत लगते हैं।
बिल्कुल, ये पुस्तक हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान का सही दिशा में विस्तार कितना जरूरी है और कैसे छोटे छोटे सामूहिक प्रयास भी मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
बहुत खूब, ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही।